हर अल्लाह ताला ने बता दिया, आगे देखें दोनों का अंजाम भी बता दिया, ईमान वाले और फासिक, मोमिन और फासिक कैसे बराबर नहीं हो सकते। हम तो सोचते हैं बराबर ही होंगे, लेकिन कैसे नहीं बराबर हो सकते, देखो तो सही। अम्मल लदीना आमनु आमिलु सालिहात फलहुम जन्नतुल मावा, तो उनके लिए बागात हैं, उनका ठिकाना जन्नतुल मावा। कहते हैं जन्नत का एक जन्नत का नाम भी है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जन्नत उनका ठिकाना होगी, यानी ये सिर्फ सैर के लिए नहीं जाएंगे जन्नत में, वहां पे रहेंगे, विजिट नहीं करना सिर्फ, खूबसूरत खूबसूरत जगहों पे तो हम दुनिया में तो सिर्फ विजिट ही करने जाते हैं ना, लेकिन वहां पे परमानेंट रेजिडेंस होगी उनकी। नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून, फिर से अमल की बात आई, ये मेहमानी के तौर पे है, ये इनकी मेहमान नवाजी है। नुज़ुल कहते हैं मेहमान नवाजी को, ये अल्लाह ने तैयार की है मेहमानी, किस वजह से, बिमा कानू यअमलून, इसलिए कि वो अमल करते थे। और अगर आप पहले ही तय कर लें कि अमल नहीं मैंने करना, इसलिए पढ़ने का क्या फायदा, और अमल तो मैं कर ही नहीं सकती, तो फिर क्या, तो पहले से तय ना करें, क्या आप इसके लिए अमल नहीं कर सकती, ये जो अभी जन्नत की खूबियां बताई हैं, इसके लिए क्या अमल नहीं किया जा सकता। अरे इंसान देख ले तो वो कहे कि मैं हर चीज करने को तैयार हूं अगर मुझे ये मिल जाए। देखिए दुनिया के छोटे छोटे घरों के लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते, तो क्या इसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, इसके लिए फौरन क्यों हाथ उठा देते हैं कि हमसे नहीं अमल होता। तो ये अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है, और देखो याद रखो ये अमल का बदला है, ये इनको बदले में मिली है जन्नतें, ऐसी जन्नतें जिनको जो इनको अपने अंदर ले लेंगी, इनका ठिकाना है मावा। मावा ऐसा कयामगाह जो ठिकाना हो, जो अपने अंदर पनाह दे दे, यानी ये जन्नतें इस तरह है कि इनको अपने अंदर एम्ब्रेस कर लेंगी, ले लेंगी, इनका इस्तकबाल करेंगी। और ये अमाले साले की वजह से, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की बात को कबूल कर लिया था ना, मान लिया था, बाउंड्रीज से को क्रॉस नहीं किया था। ये जो सारी हैं जो अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज लगाई हुई है ना, ये चीज मना, ये चीज मना, ये भी चीज मना, ये रिस्ट्रिक्शंस है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वो कोई किसी भी खर्च करने में हो, चाहे वो अर्न करने में हो, कमाई करने में हो, ये रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ेगा, बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा, वही फासिक है। तो एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो डरा वो अव्वल शब से चला, यानी वो रात के शुरू में ही उसने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो डर रहा है ना कि पता नहीं मंजिल पे पहुंचू कि ना पहुंचू, मैं जल्दी चल पड़ू। तो जो अव्वल शब से चला, जो शुरू रात में ही चल पड़ा, वो मंजिल को पहुंचा। सुनो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, सुनो अल्लाह का सौदा जन्नत है, उसका सौदा इतना सस्ता नहीं है कि आप लोग समझें कि बस ऐसे ही मिल जानी है, मुफ्ती में मिल जाएगी, मुफ्त नहीं बट रही वहां पे जन्नत, उसका सौदा बड़ा महंगा है, यानी उसका सौदा जो है ना, वो वाकई ऐसी चीज है कि जिसके लिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था ना कि दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट है, और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है। दुनिया में जो अमल आपको कड़वे लगते हैं ना, मुश्किल लगते हैं, नफ्स के ऊपर बहुत भारी लगते हैं, वो आखिरत की मिठास है। और दुनिया में जो चीजें मजे की लगती हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसमें भी दिल चाहता है, वो भी दिल चाहता है, वो आखिरत में कड़वाहट बन जाएंगी। तो देख लें कैसा प्यारा अंजाम है मोमिन का, मोमिन का अंजाम अब आपने देखा ना, क्या क्या प्यारी चीजें उसको मिलेंगी। और ये तो बात याद ही रखिए कि जो किसी आंख ने ना देखा, किसी कान ने ना सुना, और किसी दिल पे जिसका ख्याल ना गुजरा, वो सब मिलने वाला है। फिर क्या बराबर हो सकते हैं ये उसके, अम्मल लजीना फसक हुआ, अम्मल लजीना फसक, और वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की, फमा वाहुम नार, उनका ठिकाना आग है, उनका मावा क्या था जन्नत, और इनका मावा क्या है अन्नार आग। कुल्लमा अरादू, जब कभी वो इरादा करेंगे, अन यखरुजू मिनहा, कि वो निकल आए इससे, और ईदू फीहा, उसमें दोबारा डाले जाएंगे, यानी वो ऐसी तकलीफ दे जगह होगी कि इंसान इरादा करेगा, जो उसमें जाएगा वो उसका इरादा ये हुआ कि मैं इससे निकलूं किसी तरह। उस तकलीफ को ना सहते हुए वो कोशिश जरूर करेगा निकलने की, लेकिन क्या होगा जब निकलना चाहेगा और ईदू फीहा, तो दोबारा उसको इसमें लौटा दिया जाएगा। वकीला लहुम, और कहा जाएगा उनसे, दूको अजाब अन्नार, चखो अब आग का अजाब, चखो इसको, अल्लदी कुन तुम भी तुकद्दिबून, ये वही है जिसको तुम झुटलाया करते थे, जिसको तुम कहते थे कोई नहीं जहन्नुम, कोई नहीं, ये ऐसे ही डराने वाली बातें हैं, ये कोई नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। जिसको तुम माना ही नहीं करते थे ना, जिससे तुम डरा ही नहीं करते थे, जिसकी तुमने फिक्र ही नहीं की थी, जिसको तुमने कभी सोचा ही नहीं था, झुटलाते थे, अपने अमल से झुटलाते थे, कौल से झुटलाते थे। अब आप बताएं कि जो इस जहन्नुम में चला गया, क्या वो उसके बराबर हो सकता है जो जन्नत में मजे कर रहा। ये जहन्नुम की दीवारें इतनी मोटी हैं, सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च हो जाए, 40 साल तक इंसान चलता रहे तो एक दीवार की चौड़ाई है, वहां पे उनको डाल दिया जाएगा और वहां से वो निकलने की कोशिशें करेंगे कि हम निकलें यहां से, निकल नहीं पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम को 1,000 साल तक भड़काया गया तो उसकी आग सुर्ख हो गई, फिर 1,000 साल तक इसको भड़काया गया तो उसकी आग सफेद हो गई, फिर 1,000 साल तक भड़काया तो उसकी आग काली स्याह हो गई। अब जो जहन्नम है उसकी आग कैसी है, स्याह काली है, अंधेरी रात की तरह, और उसकी लिपटों में रोशनी नहीं होती, हमेशा अंधेरा ही रहता है। क्या ये उसके बराबर हो सकते हैं जो जन्नत में बैठा मजे कर रहा है, जो सोने और चांदी और इसकी दीवारों में और सोने के दरख्तों के दरमियान और वहां पे तख्त लगाए हुए बैठा हुआ, क्या वो और जो ये आग में है, क्या ये बराबर है, क्या अंजाम में बराबर है? जिंदगी बराबर नहीं थी तो अंजाम में तो देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये आग जो है ना, जो दुनिया में आप जलाते हैं, उस जहन्नुम की आग का 70th हिस्सा है, 70th। तो सहाबा ने अर्ज किया कि जलाने के लिए तो यही बहुत काफी थी जो दुनिया वाली है। आपने फरमाया इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोजख की आग की गर्मी 69 टाइम ज्यादा है। ये तो 170th हिस्सा है ना, और वहां पे जो आपको मैंने अदना जन्नती का बताया ना, उसका मकाम क्या होगा, जरा अदना जहन्नमी का भी सुन लें, जो सबसे जिसको हल्का अजाब हो रहा होगा, सबसे हल्के अजाब वाला, सबसे हल्के अजाब में क्या होगा उसको, उसकी दोनों जूतियां और तस्मे आग के होंगे, वो पूरा नहीं आग में होगा, सिर्फ दोनों जूतियां उसकी जो उसने पैर में पहनी होंगी वो आग की होंगी, और उसके लेसेस जिनकी वजह से उसका दिमाग हंडी की तरह खोल रहा होगा, और उसको ऐसे लगेगा कि सबसे ज्यादा अजाब में मैं ही हूं, हालांकि उसको सबसे कम अजाब होगा। हमसे तो दुनिया की हल्की सी आग या गर्मी या वो नहीं बर्दाश्त होती, तो वो कहां से होगी। और फिर वहां की सवारियां मैंने आपको बताई कि कैसी हैं, और यहाँ की भी सुन लें कि यहाँ पे क्या होगा, वहां पे तो फरिश्ते आके सलाम करेंगे, यहाँ पे फरिश्ते लानत करेंगे, फिटकार करेंगे। दोजख पर 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, 19 में से एक उनका जो सबसे बड़ा वो है उसका नाम मालिक है, एक फरिश्ता भी काफी है सजा देने के लिए, मगर मुख्तलिफ किस्म के अजाब देने के लिए, इंतजाम के लिए उसके डिफरेंट फरिश्ते होंगे, 19 फरिश्ते मुकर्रर किएंगे जो डिफरेंट अजाबों के ऊपर उनका इंतजाम करने के लिए। अभी जहन्नम जो है ना, वो जहन्नमियों से 100 साल के फासले पे होगी कि उसकी नजरें इन पर पड़ेंगी और वो देखते ही इतने गुस्से से पेच और ताप खाएगी और जोश से आवाजें निकालेगी, जिनको वो सुन लेंगे और जब इसकी तरफ धकेले जाएंगे तो मौत को पुकारेंगे। जैसे दुनिया में किसी मुसीबत, सख्त मुसीबत हो तो पुकारता है ना इंसान मौत को, तो वो मौत को पुकारेंगे, हाय मर जाए, हाय अब मर जाए, हाय मैं मर जाऊं, लेकिन मौत नहीं आएगी। और ये आपने जन्नत की भी वुसत सुन ली कि कितनी वुसत है, जमीनों आसमान से बढ़ के इसकी चौड़ाई है। और दोजख भी बहुत बड़ी है, लेकिन अजाब के लिए जहन्नमियों को तंग जगहों में डाला जाएगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे फरमाया कि जिस तरह दीवार में कील डाली जाती है ना, कितनी तंग जगह पे आप कील ठोंकते हैं ना दीवार में, इस तरह दोजखियों को दोजख में ठोंसा जाएगा। और वहां पे कैसी अजाब देने के लिए, अल्लाहुम्मा अजिर ना मिना नार, के जो जहरीले जानवर होंगे वो कैसे होंगे कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोजख में बड़ी लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के बराबर सांप है, एक सांप जब उनमें से एक को एक दफा डसेगा, एक दोजखी को एक दफा डसेगा, तो 40 साल तक उसकी दर्द खत्म नहीं होगी। और वहां के स्कॉर्पियंस कैसे हैं, जो कि खच्चर के बराबर हैं, ये आप डोंकी समझ लें, उसके बराबर हैं कि एक दफा वो डसेंगे वो स्कॉर्पियन, दुनिया में छोटा सा कीड़ा देख के हम डर जाते हैं, पर इतना बड़ा स्कॉर्पियन कि एक दफा जो डसे तो 40 साल तक उसकी दर्द महसूस करता रहेगा वो। और फिर ये नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला फरमाते हैं जिद ना हम आजाब अन फौकल आजाब, यानी हम उनके लिए अजाब पे अजाब बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। इन बिच्छुओं के, इन स्कॉर्पियंस के जो दांत होंगे वो लंबी खजूरों के बराबर होंगे। अब आप ये सोचें कि क्या ये और वो बराबर हो सकते हैं? और लोग कह देते हैं तो थोड़े दिन हम जहन्नुम में चले जाएंगे, फिर उसके बाद कोई नहीं, फिर उसके बाद जन्नत में। नहीं, ये अजाब भी नहीं सह सकते, थोड़े दिन का क्या, एक लम्हे का भी नहीं सह सकते। एक लम्हा भर भी जो इंसान जहन्नुम में जाके रहना गवारा कर सकता है, तो मानना कब है? आज मानना है, आज बदलना है, क्योंकि कल की सजा ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये सोचा जाए कि भाई काबिले बर्दाश्त है। ना खत्म होगी ना जान छूटेगी। पिछले दिनों मैंने कुछ बनाना था, अवन प्री हीट किया बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उसको जब खोला तो लगता था कि उसकी भाप से ना मुंह जल जाएगा, सर बस खोल के अंदर झांका ही। मैं सोच रही थी अगर ये जहन्नुम हो और कह दिया जाए कि आपके लिए फैसला हो गया कि इसमें अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए जाना होगा, तो क्या इस अवन में रहना कबूल होगा? मेरा दिल दहल गया इससे, हालांकि ये तो सिर्फ अवन है। तो इसका अगर जरा सा भी हमें पता चलेगा, इसका जरा चांस भी हो सकता है, फिर मैं सोच रही थी फिर तो सारी ये जिंदगी बेफायदा, फिर क्या इसमें हम फन कर रहे हैं, या क्या हम इसके अंदर खा पी रहे हैं, क्या फिर अपने जिस्म को पाल रहे हैं इस दिन के लिए? है कि अगर ये फैसला होना, अपने आप में ही मैं सोच रही थी कि फिर तो दिल करेगा कि कहीं भाग जाऊं, मगर ये तो कोई दुनिया की हुकूमत नहीं है कि भाग के कहीं छुप जाए तो जाके कोई ढूंढ ना सके। ये तो वो है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना कि भाग सकते हो तो भागो, तुम तो भाग नहीं सकते, फिर क्या करना चाहिए? फिर उसी की पनाह में आ जाएं, उसी के दामन रहमत में आ जाएं, रोते हुए उसी के आगे झुक जाएं, बिछ जाएं, उसी की मान क्यों नहीं लें जिसने बचाना है, जिसके पास छुप के ही हम बच सकते हैं, तो उससे दूर भाग के तो हम कहीं नहीं बच सकते। वो ही तर्स खा लेगा तो हमारा काम बन जाएगा, वो रहम खा लेगा तो बचत हो जाएगी, वरना और कोई रास्ता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि कोई और रास्ता है? क्या कहीं छुप जाने से हमारा काम बन सकता है? कहीं भागने से हमारा काम बन सकता है? क्या उसकी ना मान के हमारा कोई काम बन सकता है? फिर क्यों ना उसी को मना ले, उसी के पास है, उसी के हाथ में कि वो हमें इससे बचा ले, कोई और नहीं बचा सकता। मालकुम मिन वली वला शफी, कोई तो ना कोई मददगार होगा तो ना कोई दोस्त होगा, जब कोई भी नहीं है बचाने वाला, फिर क्यों ना उसी से मदद मांग ले, जब पनाह ही एक है और सजा इतनी बड़ी है ये कि सह नहीं सकते। ऐसी जगह है जहां ना जिंदगी है, जिंदगी को जिंदगी कह नहीं सकते, और ना ही मौत है, ये खलासी ही हो जाए। ताला ने फरमाया ना, थुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर ना उसमें मौत आएगी ना जिंदगी होगी, ना जिएंगे ना मरेंगे। एक जिल्द जल जाएगी तो दूसरी जिल्द आ जाएगी, ताकि मजीद अजाब में पड़े रहें। फदूकू फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, चखो इसको, ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे लिए मगर अजाब ही, अजाब ही सिर्फ ज्यादा होगा और कोई चीज नहीं। फिर हम किस भूल में पड़े हुए, वो कौन सी चीज है जो हमें गफलत में डालेगे? ये सामने ये नजर आ रहा है और हम अंजाम से गाफिल हैं। जन्नत की नेमतें भी ऐसी हैं जिनका ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना दिल पे गुजर हुआ। और वाकई जहन्नुम भी ऐसी है, उसके अजाब भी ऐसे हैं, और उसकी वो ऐसी बला जिसका तस्वुर इस दुनिया में नहीं किया जा सकता। या कोई इमेजिन कर सकता है ऐसे सांप और ऐसे बिच्छू और ऐसी आग और ऐसी जगह जहां पे ओढ़ना भी आग है, बिछोना भी आग है, बिस्तर भी नीचे आग है, ऊपर कंबल भी आग है, ऊपर टेंट भी आग का है। लेकिन हमारा रब कितना मेहरबान है, फरमाता है वला नज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूना अज़ाबिल अकबर, और अलबत्ता हम जरूर चखाएंगे उनको अदना अजाब में से बड़े अजाब के अलावा। किस लिए? लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए। इस बड़े अजाब से पहले, इस जहन्नुम को देखने से पहले अल्लाह ताला ये छोटे छोटे अजाब भेजता है दुनिया में, छोटी छोटी तकलीफें भेजता है, छोटी छोटी परेशानियां। छोटी कहेंगे ना इनको, उससे तो छोटी ही कहेंगे। किसी के ऊपर बहुत भी बड़ी, कहते हैं मुसीबत का पहाड़ टूट गया, दुख का पहाड़ टूट गया, मगर वो पहाड़ भी जो है ना वो भी छोटा है जहन्नुम के मुकाबले में। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते थे ना, तो हजरत हफ्सा फरमाती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते थे और फरमाते थे, हम जब इस तरह लेटते हैं तो हमें क्या याद आता है? क्या याद आता है आपको? सारे दिन की एक्टिविटीज, कल की प्लानिंग और इस तरह की चीजें, यही याद आती है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका, ऐ अल्लाह मुझे अपने अज़ाब से बचा ले। जिस रोज तुम अपने बंदों को उठाएगा उस दिन के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह ताला माफ करे। तो ये दोनों, बहुत फर्क है इन दोनों में, एक जीत गया और एक हार गया। एक ने खुद को बड़ा माना और एक ने रब को बड़ा माना। एक अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चला, एक अपनी मर्जी के मुताबिक चला। कितना फर्क है। लेकिन रब इतना रहमान और रहीम है, ये है उसकी रहमत कि वो चखाता है। वो दुनिया में छोटे छोटे ये अजाब कह लें, या आप कह लें मुसीबतें कह लें, परेशानियां कह लें, फिक्रें कह लें, कि वो भेजता है। कैसी? ये दुनिया में कभी बीमारियां आ जाती हैं, कभी तकलीफें आ जाती हैं, कभी औलाद की परेशानी, कभी कोई और, कभी कहत साली, कभी ये बदअमनी, कत्लो गारत हो रहा है, इस तरह की जलजले आ रहे हैं, सुनामियां आ रही हैं, इस तरह की चीजें अल्लाह ताला भेजता है। किससे? अजाब अल अकबर से पहले। अजाब अल अकबर कौन सा है? वो जो जहन्नुम का अजाब है, आखरत का जो अजाब है, इससे पहले अल्लाह दुनिया में ये रिमाइंडर्स भेज रहा है, रिमाइंडर्स भेज रहा है, वार्निंग्स दे रहा है, वार्निंग्स दे रहा है, कि इंसान क्या करे? तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। क्योंकि जब दुनिया में मुसीबतें आती हैं तो वो आदमी जो वाकई नजर रखता है ना, वो सोचेगा कि अगर मेरे से दुनिया की ये परेशानी नहीं बर्दाश्त होती, आखरत की कैसे बर्दाश्त होगी? वो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, वो ढीठ नहीं बनेगा, वो अपनी जिंदगी को स्ट्रेट कर लेगा, वो संभल जाएगा। तो दुनिया की तकलीफें उनको हिला देती हैं, फिर वो अल्लाह के आगे झुक जाते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी का बच्चा फौत हो जाता है, उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो अल्लाह ताला ये दुनिया में रिमाइंडर्स भेजता है, ये छोटी छोटी मुसीबतें हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं, अजाब है, जो वो उस बड़े से पहले अल्लाह ताला भेजता है, ताकि इंसान अपने आप को स्ट्रेट कर ले, देख लो सीधे हो जाओ, शायद कि तुम तौबा कर लो। लेकिन जो यहां पे टस से मस नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई, तो फिर उसका क्या करना, फिर उसका तो ठिकाना आग ही है, फिर आग ही उसको पिघलाएगी। क्योंकि जो दुनिया में नहीं पिघला ना, जो अल्लाह की आयतें सुन के नहीं पिघला, जो जहन्नुम के जिक्र सुन के नहीं पिघला, जो ये बातें सुन के भी उसने अपनी जिंदगी को स्ट्रेट नहीं किया, उसके ऊपर दुनिया में परेशानियां मुसीबतें भी आई, वो फिर भी नहीं संभला, तो वो तो फिर उसको कौन सी चीज सीधा करेगी, फिर उसको जहन्नुम की आग ही सीधा कर सकती है। ऐसी आग कि जहां से फिर वो निकलना भी चाहेंगे ना, तो फरिश्ते अंदर धकेल देंगे, निकलने नहीं देंगे उनको। अब आप खुद ही सोच लें, वो इंसान जो खुद को दुनिया में बड़ा इज्जत वाला समझता है ना, बड़ा बावकार समझता है, आज जो अपनी मर्जी करना चाहता है, फिस्क करता है, हदें तोड़ता है अल्लाह की, खुद को बड़ी चीज समझता है ना, कि मैं जो चाहूं करूं, बड़ा रिस्पेक्टेबल समझता है, वो साहब जी, वो बेगम साहबा, देखो आज कैसे धुतकारे जा रहे हैं, कि कहा जा रहा है फजूकु अजाब अन्नार, उनसे कहा जा रहा है चखो अब आग का अजाब, कैसे फिटकारे जा रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए जिए थे वो, क्या इसी दिन के लिए पले बड़े थे, क्या इसी दिन के लिए दुनिया में अय्याशियां की थी, क्या इस दिन को देखने के लिए उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। उनसे कहा जाएगा चखो आज ना वक्त था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने नहीं माना, कई अल्लाह ने रिमाइंडर तुम्हारे लिए भेजे, कई वार्निंग साइंस भेजे, कई परेशानियां भी भेजी, कई मुसीबतें भेजी, कभी हरिकेन्स आए, तो कभी महंगाई हुई, तो कभी कत्लो गारत हुआ, तो कभी कोई और परेशानी हुई, कोई और एक्सीडेंट्स हुए, कहीं तो तुम संभल जाते, कहीं तो तुम हिल जाते, तो तुम हिल के ही नहीं दिए, कहीं तो यकीन आ जाता कि एक रब है, उसकी मान के चलना है, कहीं तो अपनी ढिटाई छोड़ देते, लेकिन तुमने नहीं किया, तो अब चखो इस अजाब को। तो अल्लाह ताला तो आपको बुलाने के लिए ये मुसीबतें भेजता है, उनमें भी वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं, कई महरूमियां देता है, कई तकलीफें देता है, लेकिन बाज लोग फिर भी नहीं समझते, बाज कुछ नसीब होते हैं कि यही चीजें उनको सीधा कर देती, समझ जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ लौटा लिया, उनकी जिंदगियां वाकई बदल जाती हैं। और कुफारे मक्का के ऊपर भी ये देखे, अल्लाह ताला ने कहत मुसल्लत किया था और जंगे मुसल्लत की थी कि वो संभल जाएं, लौट आए, अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनके ऊपर भी ये आए थे अजाब अल अदना, लेकिन वो नहीं समझे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही थुम्मा आरद अन्हा, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, ये कितना बड़ा जालिम है, ऐसा इंसान कितना बड़ा जालिम है। आप जालिम किसको समझते हैं? जालिम वो समझते हैं जो कि लोगों के पैसे खा जाता है, जालिम वो समझते हैं जो किसी के ऊपर टॉर्चर किसी को देता है, जालिम आप वो समझते हैं जो किसी को मार धाड़ करता है किसी के साथ, उसको जालिम समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, यानी कि सबसे बड़ा जालिम वो है कौन, मिम्मल दुख की रबी आयाती रबी, जिसके सामने अल्लाह की आयात के साथ नसीहत की गई, तुम आरदा आना, उसने परवाह ही नहीं की, उसने कोल्ड शोल्डर दिखाया, उसने वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने इग्नोर किया, वो सबसे बड़ा जालिम है। क्या आपको पता है, आपने कभी ऐसे इंसान को जालिम समझा, कि कुरान सुना समझा फिर भी माना नहीं और फिर भी मुंह फेर के चले गए? कई लोग आते हैं कुरान सुनते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है उनको, छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, इससे क्या बात हो गई कि ये कुरान सुन के भी कोई इससे मुंह मोड़े, कितनी बड़ी उस इंसान के लिए अफसोस का मकाम है कि सुन के फिर पीठ फेर जाना, सुन के फिर इसको छोड़ के चले जाना। छोड़ना किस तरह है, यहां तो अमल नहीं किया, अमल में इग्नोर कर दिया कि अल्लाह ने आयतें, अल्लाह की आयतें उसके सामने पढ़ी गई, उसको सुनाई गई, उसको नसीहत की गई, लेकिन वो ढीठ के ढीठ, ऐसे ढीठ हैं कि ऐसे लगता है इन्होंने कभी सुना ही नहीं, मुंह मोड़ के चल दिए। जब उनका अमल देखे तो लगता है इनको कभी इसने कुरान पढ़ा भी है, लगता तो नहीं है कि इसके ऊपर कोई असर हुआ, सुनी अनसुनी कर देते हैं बिल्कुल, जैसे कि एक कान से गई थी दूसरे से निकल गई। क्लास से उठते ही ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं वहीं पे छोड़ दिया कुरान को, मुंह मोड़ लिया। और बाज अमल से नहीं करते तो वैसे ही फिजिकली छोड़ के चले जाते हैं। इससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो अल्लाह की आयतों को सुन के भी फिर उसके बाद उसके अंदर इतना हौसला है कि वो इनको छोड़ के चला जाए, इनसे मुंह मोड़ ले। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, बेशक हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं। तो देखो इससे बड़ा मुजरिम फिर कौन हो सकता है? मुजरिमों से तो अल्लाह ताला ने इंतकाम लेना ही है, फिर अल्लाह ने बदला लेना, अल्लाह बदला लेगा फिर ऐसे लोगों से कि जो उसके कुरान को छोड़ के चले जाए, जो इसको बेवकत समझे, जो इसको कोई वैल्यू ना दे। और फिर एक तो लोग होते हैं ना जिन्होंने कभी सुना ही नहीं, उन बेचारों को तो कोई पता ही नहीं है। एक ऐसे लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र सुन लिया फिर भी वो उसके बाद मुंह मोड़ लेते हैं। कितनी हिम्मत का काम है ये। अच्छा यहाँ पे एक तो अल्लाह के जिक्र से मुराद ये भी होता है जुबानी जिक्र करना। मसलन आप किसी मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो वो उठ के चले जाते हैं या पहलू बदलने लगते हैं कि हाय कभी खत्म करें, हमारी तो जान ही मुश्किल में आ गई। उलझन होने लगती है उनको, अनईजी होने लगते हैं। तो अल्लाह के जिक्र से मुराद कुरान भी है, वैसे भी अल्लाह का जिक्र है, और उसकी आयतें, उसकी आयात का स्पेशली जिक्र, यानी उसके जो हुक्मों की तालीम है वो भी, उसके अहकाम की तालीम। अब ये तालीम हो रही है ना, जैसे तो उनको नसीहत जब की जाती है, अल्लाह का कुरान सुना के नसीहत की जाती है, याद दहानी कराई जाती है, तो वो आगे से ये करते हैं। एक तो वो थे ना जब उनके सामने अल्लाह की आयात के साथ उनको याद कराया गया, तो उन्होंने क्या किया था? आयत नंबर 15 में देखिए उन्होंने क्या किया था। ध्यान से सुनते हैं इसीलिए तो गिर पड़ते हैं, ढीठ नहीं बनते। और ये क्या, वो मुंह मोड़ के चले जाते हैं, ये भी तकब्बुर की एक निशानी है। ये आयत बड़ी सख्त है क्योंकि देखें बहुत से लोग खुद को बहुत फेयर और अच्छा समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसके हाँ वो जालिम लिखे जाते हैं। क्योंकि जिसको कुरान के जरिए समझाया जाए लेकिन वो सुन के भी पीठ मोड़ ले, तो वो अल्लाह के नजदीक जालिम है। और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला इंतकाम लेगा, क्योंकि जो मुजरिम है, मुजरिम कौन होता है? ठीक है, जो जो सुन के भी, जान के भी, मुजरिम क्रिमिनल को हम कहते हैं ना, सुन के भी जो अपना अमल ना बदले, जो उसी पर चलता रहे जिस पे था, जिस पे जब तो कुरान शुरू किया था, जहां उस वक्त खड़े हुए थे, आज भी वहीं पे खड़े हुए। मान जाने वाले तो ऐसे नहीं ना होते, वो तो झुक जाते हैं। ये लोग मुंह फेर के चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए और अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना करे जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो उसके कानून की परवाह नहीं करते। जब अल्लाह की आयतें सुनाई गई हैं उसके बाद भी वो जरा हिलते जुलते नहीं है, तो जब अल्लाह इंतकाम लेगा उनसे, सोचें जब अल्लाह ताला का इंतकाम कैसा होगा। एक बंदा आपको कह दे कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तुमसे देखना कैसा इंतकाम लेती हूँ, एक इंसान हमें कह दे ना, चाहे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, हालांकि वो क्या कर सकता है, कोई किसी का नुकसान करना भी चाहे, तो जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन हम इतना डर जाते हैं कि फलां ने ये मुझे कहा है कि अब वो मेरे से लगी तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, या वो मुझसे बदला लेगी, पता नहीं अब क्या करेगी, पता नहीं वो किस तरह मुझे नुकसान पहुंचाएगी। और यहां पे अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुजरिमों से इंतकाम लेगा। ये अल्लाह के नजदीक क्या है? क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है कि कुरान सुन के भी फिर उसके बाद ढीठ बने। ये तो कितना घाटे का सौदा है ना। मुजरिम अगर आज खुद को आजाद समझ रहे हैं कि हम जो मर्जी करें, कुरान सुन के भी हम ना भी करें तो अमल, या ना भी हम कोई बात माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, अल्लाह इंतकाम लेगा। वो बात है ना, डर उसकी देरगिरी से, किस नहीं ना, ना जाओ उसके तहम्मुल पर कि बेढब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि सख्त है इंतकाम उसका, उसके तहमुल पे ना जाए, उसके तहमुल को ये ना समझें कि अब मेरी पकड़ ही नहीं होनी। अल्लाह का तहमुल है ये, वो अगर देर से पकड़ता है तो ये याद रखें कि उसका इंतकाम बहुत सख्त है। देर हो सकती है लेकिन जब वो इंतकाम लेने पर आए तो वो अल्लाह का इंतकाम है। फिर भी हम सुन के उसके बाद कहते हैं कोई ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगा शायद कुरान, और उसके बाद छोड़ जाते हैं, इस कुरान को छोड़ जाते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत उन लोगों पे होती है, उनके ऊपर नहीं मुझे कुछ होता जो कि अभी बेचारों ने सुना ही नहीं है। उसका बेचारे का क्या कसूर जिसने सुना ही नहीं, आज तक उसको किसी ने बताया ही नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि सुन के भी उसके बाद छोड़ जाए इसको, उनके ऊपर बड़ी हैरत होती है कि ये इनका हौसला कैसे पड़ा इस कलाम को छोड़ने को, इससे दूर होने को। यहां से भी हमें पता चलता है कि हम जब अल्लाह की आयात के साथ हमें नसीहत की जाए तो हमने ऐसे नहीं बनना या हम बिल्कुल बेअमल रहे, नहीं कोशिश जरूर करें, अल्लाह से दुआ भी करें, या अल्लाह मुझे तौफीक दे दे अमल करने की। मुझे पता चला कि किसी ग्रुप में ये बात हुई, जब मैंने मोहसिनीन की बात बताई तो मुझे लोगों का तो नहीं पता कि इन्होंने कहा है ये, लेकिन मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि हम तो कभी ये बन ही नहीं सकते, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्यों आप ऐसे कहते हैं, हम तो नहीं ये कभी हो सकते। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे, बजाय नगेट करने के इनकार ना किया करें, हम तो कर ही नहीं सकते ये तो बड़ा मुश्किल है, इनकार करना है। कहे अल्लाह तू तौफीक दे दे, तेरी तौफीक दिए बगैर मैं नहीं कर सकती, मेरी इतनी ताकत कहाँ। साहबा कराम भी तो इंसान ही थे, उनके पास तो कोई वही तो नहीं आती थी, तो उन्होंने किया ना, मोहसिनीन बने ना। अल्लाह तू चाहे तो मैं भी मोहसिन बन सकती हूँ, तो इनकार ना किया कीजिए, कोशिश करें और साथ दुआ भी करें। कोई बात नहीं, गिरेंगे तो फिर गिर के उसके बाद फिर हम चलेंगे, गिरेंगे फिर चलेंगे, सारी जिंदगी इसी तरह है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो लोग अच्छे हैं जो गिर के फिर उठते हैं फिर चलते हैं, बजाय उन लोगों के जो कोशिश ही नहीं करते। बेहतरीन खताकार अल्लाह के नजदीक कौन सा है, जो गलत करता है फिर तौबा करता है। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है, अमल करेंगे तो जाहिर है अमल में खता भी खाएंगे, एक सही करेंगे तो दो गलत हो जाएंगे, फिर वो दो सही करेंगे तो चार गलत हो जाएंगे, इस तरह ही हमारी जिंदगी गुजर जानी है। मगर जो गलत होता है उसके ऊपर माफी मांगते रहें, फिर आगे चलते रहें, छोड़े नहीं। और वो लोग जो ट्राई ही नहीं करते, वो कहते हैं हमसे तो होना ही नहीं है, हमसे तो किया ही नहीं जाता, हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो फेयर है ही नहीं हमारे लिए, ये तो आज के जमाने में कैसे होगा, ये तो इतनी पुरानी बातें और ये कैसे आज हो सकती, ये आरत अनहा है। वलकद आतैना मूसल किताबा, और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब दी, फला तकुन फी मिरयतिन मिन लिकाई, तो आप उसकी मुलाकात में शक ना करें। अच्छा अब यहाँ पे लिकाई ही की प्रोनाउन किस तरफ जा रही है, एक तरफ तो ये कुरान की तरफ, यानी आप कुरान के मिलने पे शक ना करें, हमने तो पहले मूसा अलैहि सलाम को भी किताब दी, तो आप इसमें शक ना करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे किताब मिलेगी। क्योंकि लोग कहते थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ किताब मिलेगी, मुशरिकी ने मक्का इस चीज के ऊपर बहुत शक करते थे, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सिखा गया आके, या कहीं से आपने जाके नकल कर लिया या खुद से बना लिया या कुछ। तो ये देखो कि जब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने किताब दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दे सकता, तो क्यों शक करते हो इस चीज पे, इस पे शक ना करो। लेकिन वो जो किताब थी कि वो थी वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल, उसको हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बनाया था। इससे यहां पे ये भी पता चला कि जो तौरात है वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी, सबके लिए आने वाली दुनिया तक नहीं थी क्यामत तक, कुरान जो है वो तमाम इंसानों के लिए और क्यामत तक के लिए। तो इससे पहले मूसा अलैहि सलाम को भी किताब मिली, फिर इतने सरप्राइज्ड क्यों हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब क्यों मिल गई, ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ। इंसानियत के पास तो इससे पहले भी हिदायत का सामान आता रहा है, और तुम्हारे करीब ही ऐसे लोग रहते हैं। बनी इसराइल का जिक्र इसलिए किया कि वहां पे यहूदी भी रहा करते थे ना, तो तुम्हारे से करीब ही ऐसे लोग हैं। और मुशरिकीन मक्का खास तौर पे यहूदियों के पास जाते थे पूछने के लिए, और कहते थे ये पीपल ऑफ द बुक हैं, इनको ज्यादा पता है। तो तुम्हारे पास ही वो लोग हैं ना जिनके पास किताब आई थी, तो तुम फिर इतना शक क्यों कर रहे हो? और दूसरा, अगर माना लिया जाए लिका ही से मुराद अगर लिया जाए मूसा अलैहि सलाम, तो वलकद आतैना मूसल किताब, मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने किताब दी, फरमाया कि हमने किताब दी, फला तकुन फी मिरयतिम मिन लिकाई, तो तुम ना शक करना, शक में ना पड़ो उसकी मुलाकात से। उसकी किसकी? मूसा अलैहि सलाम की मुलाकात। मूसा अलैहि सलाम की मुलाकात पे शक ना करो कि वो उनकी मुलाकात हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मेराज पे हुई थी। वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मूसा अलैहि सलाम से मिले हैं, तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया भी कि मेराज वाली रात मूसा अलैहि सलाम को मैंने देखा था कि वो गंदमी रंग के थे और लंबे कद के और घुंघरियाले बालों वाले थे। तो इसलिए इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। वजअलनाहू, और हमने बनाया उसको, किसको? फिर यहां पे मतलब क्या होगा? मूसा अलैहि सलाम को। हुदन ली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बनाया। मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल के लिए नबी बन के आए थे। वजअलना मिनहुम आइम्मतन, और फिर हमने बनाए इनमें इमाम। मूसा अलैहि सलाम के बाद भी अल्लाह ताला ने उनमें इमाम बनाए। इमाम कौन? मतलब है दीनी रहनुमा, रिलीजियस लीडर जिसको कहेंगे, दीन की तरफ बुलाने वाले। यहदूना, वो रहनुमाई करते थे, भी अमरीना, साथ हमारे हुक्म के, लम्मा सबरू, जब उन्होंने सबर किया, वकानू भी आयातिना यूकिनून, और वो थे हमारी आयात के साथ यकीन रखते हुए, हमारी आयात पे यकीन रखते हुए। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि हमने इमाम भेजे बनी इसराइल में। मूसा अलैहि सलाम के बाद कई रिलीजियस लीडर आए, इमाम आए, जिन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अहकामात की तरफ बुलाया। किन दो कंडीशंस पे? दो चीजें उनमें थीं जिसकी वजह से वो ये रहनुमाई का काम कर सके। और वो दो चीजें क्या थी? इस वजह से कि जब उन्होंने सबर किया और जब उन्होंने हमारी आयात पे यकीन किया, तो वो रहनुमाई का काम कर सके। समझ आई बात? इसका मतलब क्या है कि दीनी रहनुमाई के लिए अगर किसी ने दीन का काम करना हो, लोगों को दीन की तरफ बुलाना हो, तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। अल्लाह के हुक्म लोगों तक पहुंचाने हो तो दो चीजें क्या हैं? सबर और अल्लाह की आयात पे यकीन। पहले खुद यकीन होगा ही तो लोगों को बुलाओगे ना। अगर आपको खुद ही यकीन नहीं है और आप खुद थोड़ा सा इतने कन्विंस्ड नहीं है, थोड़ा आपको शक है, तो आप लोगों को क्या बुलाओगे? कैसे उनको कन्विंस करोगे? और पहली बात जो है सबर, सबर इतना ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो दीन का काम है इसके अंदर इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जब लोगों तक आप बात पहुंचाते हैं ना, तो दावते दीन देते हैं, तो उस वक्त कदम कदम पे ऐसी कभी माली, कभी जिस्मानी, कभी जहनी, हर किस्म की परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। जिसमें सब्र ना हो वो इस रास्ते पर ज्यादा दूर चल ही नहीं सकता। इसलिए कि जब आप तबलीग करेंगे, जब अल्लाह के अहकामात पहुंचाएंगे, तो क्या होगा? जाहिर है जो कोई गलत कर रहा होगा, जब आप उसको बताएंगे तो वो तो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, और कहेगा किसी, कभी आपको मजाक उड़ाएगा, कभी कोई ताने देगा, हाँ तुम्हारा पता है हमें, तुम खुद बड़ी कोई ऐसे थी और तुम ये थी। और कभी अल्लाह ताला माफ करे, आजकल तो फिजिकल टॉर्चर नहीं है, लेकिन पहले वक्त में तो फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता था। तो जो दाई होता है ना, जो जिनको यहाँ पे आइम्मा कहा गया, उसके लिए ये बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो इनका भला चाहती हूं और देखो ये मेरे पीछे पड़े हैं। अब अगर उसके अंदर सबर नहीं होगा, सबर से मतलब यहां पे क्या है कि खुद को बांधे रखना, बांध के रखना अपने, ये नहीं है कि 2 दिन लोगों की बातें सुनी और तीसरे दिन काम छोड़ के भाग गए कि हमसे नहीं होता भाई, हम तो अब आइंदा से हमें क्या जरूरत है किसी को कुछ कहने की। नहीं, सब्र चाहिए इसमें और कंट्रोल चाहिए। कई दफा गुस्से पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, कई दफा अपनी जो लोगों की गलत बातें हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है तहम्मुल के साथ। ये नहीं अगर आप गुस्से में आ गए, ये तुम क्या बात कर रही हो और ये तुम क्या काम कर रही हो, तो फिर आप कैसे नसीहत करेंगे। इसी तरह अगर आप इतने सेंसिटिव हो गए कि दूसरे की बात ही ना बर्दाश्त कर सके, तो फिर भी नहीं आप ये तबलीग का काम कर सकते। और फिर ये भी सब्र है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं नजर आते। अगर मैं कहूँ कि लो मैं तो इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, क्या फायदा हुआ इनको पढ़ाने का, देखो जरा अभी तक तो ये ठीक हुए नहीं, इनके अमल तो बदले नहीं, छोड़ो मैं नहीं आइंदा पढ़ाती, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें बहुत अरसा लगता है, बहुत दिन लगते हैं, बड़ा सबर करना पड़ता है। एकदम से डिसहार्ट होके अगर इंसान अगले दिन काम छोड़ दे तो फायदा नहीं है फिर, तो उसके लिए भी सबर चाहिए। तो सबर इसमें तो हर तरह से सबर चाहिए, कितने सारे सबर के मौके हैं ना। तो तकलीफों पे भी सबर होगा, अपने जज्बात पे भी सबर होगा, इंतजार के लिए भी सबर चाहिए, फिर लोगों के इतराजात पे भी सबर चाहिए, फिर लोगों के मजाक करने पे भी सबर चाहिए, फिर आप कभी कभी इस चीज में भी सबर चाहिए होता है कि इंसान सोचता है कि भाई सारे तो इतने मजे कर रहे हैं अपने और फन कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई और मजे मजे के काम कर रहे हैं, और मुझे देखो जरा मैं तो इसमें ही पड़ा हुआ हूँ और मैं तो बस एक ही काम में लगा हुआ और बस मेरा काम लोगों को बताना, और इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो शैतान कहता है छोड़ो तुम्हें, तुम भी जाने दो, तुम्हें क्या पड़ा हुआ कि तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम भी आराम करो, तुम भी 10-10 11-11 बजे सो के उठो जैसे लोग उठते हैं, तुम भी मजे करो, फन करो, घूमो फिरो, सैरें करो, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि तुमने ठेका लिया हुआ दीन का सारा, छोड़ो तुम। तो ऐसे वक्त में भी सब्र करने की जरूरत होती है। और फिर कभी कभी इंसान को दावते दीन का काम एट द कॉस्ट ऑफ दुनिया भी करना पड़ता है। ये दुनिया में बहुत सारे आपको जॉब्स और नजर आ रही हैं, बड़े मौके कमाने के नजर आ रहे हैं, तो शैतान जहन में डालता है अब तो छोड़ो तुम इस काम को, तुम्हें तुम्हारे 4 पैसे ही बन जाएंगे, चलो वहां पे जॉब कर लो। तो लेकिन उस वक्त भी सब्र करना पड़ता है कि नहीं। जहां जहां आप देखें सब्र की जरूरत है, सारे इस रास्ते में जब आप किसी को नसीहत करने के लिए कमर बांध लेते हैं, जब आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, बहुत सब्र करना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि घर वालों के बातों के ऊपर सब्र करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि आपको अपने दोस्त अहबाब के भी ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम किस तरफ लग गई हो, वो छोड़ो इस चीज को, और अपनी अपनी भी फिक्र किया करो, अपनी सेहत का ख्याल करो, अपनी इस चीज का ख्याल करो, अपनी आराम, तुम छोड़ो ये सब चीजें। तो बहुत बहुत चीजों पे सब्र 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 इस रास्ते में है ही ये चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना डराया गया, इतना डराया गया, कभी कोई इंसान इतना नहीं डराया गया, और मुझे अल्लाह के रास्ते में इतनी तकलीफें दी गई कि कभी इस किसी आदमी को इतनी तकलीफ नहीं दी गई, और मुझ पर 30 दिन और रातें ऐसे गुजरे हैं कि मेरे और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई जानदार खा सके। अब आप सोचें किस किस तरह की उनको फिजिकल भी मेंटल भी किस किस तरह का टॉर्चर किया गया। खास तौर पे जब टॉर्चर आपके अपनों की तरफ से हो ना, और अपनों की तरफ से सपोर्ट ना मिले, तो बहुत ज्यादा इंसान के लिए तकलीफ देह वक्त होता है, और उसमें सब्र बहुत जरूरी होता है। सब्र इस्तकामत का भी तो नाम है ना, कि इंसान जमा रहे, फिर भी जमा रहे, इन लोगों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, बाहर वालों से, किसी की तरफ से भी मुखालफत आए, तब भी इंसान जमा रहे। ये काम ऐसे ही नहीं होता। खास तौर पे जब अपने करीब वालों से इंसान को तकलीफ पहुंचती है, तो वो इंसान के लिए सबसे मुश्किल होती है बर्दाश्त करनी, और तरह तरह की इसमें हर एक के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है दो लोगों की सिमिलर हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए सिचुएशन होंगी, मगर बाहर कैफ हर सिचुएशन में एक ही इलाज है, और वो है सबर। फिर आप ये भी देखें कि जब कोई इंसान ये काम करने लगता है तो लोग उसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं ना, कि अब हमारा हक है कि हम इस पे कोई भी कमेंट करें, इसके बारे में कोई भी गॉसिप्स करें, इसके बारे में कोई भी र्यूमर्स उड़ाएं, ये हमारा हक है। अब हम इसके बारे में जितनी भी बातें करें ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त में भी फिर सब्र ही चाहिए। तो बनी इसराइल का तो आपने पढ़ा है ना कि उन्होंने मूसा अलैहि सलाम के साथ कितना कैसा सलूक किया, किस किस तरह उनको सताया। तो जो उनके आइम्मा आए, सोचे फिर उनका हाल क्या किया होगा। इन्होंने तो अपने नबियों को कत्ल कर दिया था। तो आप खुद बताइए कि इन्होंने अपने इमाम जो हैं, इमाम से मुराद के नबियों के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी जो भी आए इनको दीन सिखाने के लिए, बताने के लिए, अल्लाह के अहकाम पहुंचाने के लिए, उनके साथ इन्होंने क्या हाल किया होगा। मगर सबर जो है ना, वो जरूरी है। सबर करते रहे तो ये काम कर चलता रहा। जब सबर और अल्लाह की आयात पे यकीन, इन दो चीजों के अंदर इंसान शेकी हो जाता तो ये काम नहीं हो सकता। इन्ना रब्बा का हुआ यफसलु बैनहुम यौमल कियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून। अल्लाह ही है जो फैसला करेगा इनके दरमियान क्यामत के दिन, इसमें जो वो इख्तलाफ करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है आइम्मा की। अब एक तरफ लोग कहते हैं नहीं, तुम गलत हो, तुम जो काम कर रहे हो वो सही नहीं है, बहुत उसकी मुखालफत करते हैं। अब इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला कैसे होगा? दुनिया में तो कोई ना फैसला करने देता है और ना करने की जरूरत समझता है। दुनिया में तो आप किसी को चाहे ना कि ये फैसला हो जाए तो कोई मानता ही नहीं, क्योंकि हर एक अपने आप को सच समझता है, हर एक अपने आप को सही समझता है। ऐसे वक्त के अंदर इंसान को इसी चीज पे भरोसा करना चाहिए कि एक दिन फैसले का है जिसमें अल्लाह फैसला करेगा और उसमें सब इख्तलाफात का फैसला हो जाएगा, तो इंसान डिसहार्ट ना हो। अवलम यहदी लहुम कम अहलकना मिन कबलिहिम मिन अल-कुरून यमशून फी मसाकिनिहिम। क्या उनको रहनुमाई नहीं मिलती? क्या उनको समझ नहीं आता? क्या वो देखते नहीं है कितनी हमने बस्तियां इनसे पहले, कितनी सारी बस्तियां आई जो जहां ये चलते फिरते हैं उनके घरों में, वो सारी की सारी बस्तियां खत्म हो गई, कहाँ चली गई, तबाह हो गई, किधर है उनका वजूद आज? इन्ना फिदालिकल आयात, इसमें बड़ी निशानी है, एक नहीं है, एक बात नहीं है सबक की, बहुत सारी निशानी है। अफलाई असमा, उन क्या फिर वो सुनते नहीं है? आज तुम इनके घरों में जिनके चल फिर रहे हो, देख रहे हो, कभी वो यहां पे ही चला करते थे। अल्लाह ने अगर उनको यहां रहने नहीं दिया इन घरों में, तो बताओ कि अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ देगा? तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुम यहां पे हमेशा रहोगे? आज अगर आप देखें तो वाकई क्या चीज है जो हमें अल्लाह के रास्ते पे आने नहीं देती, हमारी जिंदगी को बदलने नहीं देती? ये मसाकिन नहीं है ना, घर, घरों की मसरूफियात, घरों के काम, घर के लोन्स, घर के खर्चे, घर की मेंटेनेंस। किसी ने मुझे कहा कि मैं अच्छी भली क्लास के अंदर आ रही थी, लेकिन जब से हमने घर लिया ना, तो घर की मसरूफियत इतनी ज्यादा हो गई कि फिर मैं आ ही नहीं सकी। तो दो चार क्लासें जो मैंने शुरू में ली थी, उसके बाद बस घर लेना था। तो मुझे यही सोच रही थी कि देखो, इंसान क्या इन्हीं घरों को साथ ले जाएगा? कब्र में भी ले जाओगे क्या इन घरों को? नहीं, वो तो पिछले भी नहीं ले जा सके। पिछलों के घरों में हम जाके जब घूमते फिरते हैं, उनको रात में देखते हैं, उनको चलते फिरते हैं, तो उनसे इबरत नहीं मिलती कि वो लोग भी अपने घरों को यहीं छोड़ गए ना? कहाँ ले गए वो साथ अपने? तो हम भी इसी तरह छोड़ जाएंगे और इन्हीं घरों में कोई और रह बस रहे होंगे। देखा नहीं है आपने लोगों के जनाजे उनके घरों से उठते हुए? तो क्या साथ ले जा रहे होते हैं अपने घर? देखो, वो भी हलाक हो गए, वो भी चले गए। अब देखो, कोई सदा सुनाई देती है उनकी? कोई उनके लिए रोने वाला है? उनकी तो आवाजें भी खत्म हो गई। तो जब वो पिछले चले गए, तो तुम क्या बाकी रहोगे? सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हल तो हिस्सू मिनहुम मिन अहदिन औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा। क्या तुम इनमें से किसी की कोई कुछ महसूस करते हो, या किसी की भी कोई आहट सुनते हो? ऐसे लगता है जैसे कभी यहाँ पे बसे ही नहीं थे। क्या पता चलता है कि कोई यहाँ पे कभी रहता था? उनके वीरान घर क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? सूरह हज में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कितनी बस्तियां जिनको हमने हलाक कर दिया, वो जालिम थी, फिर फिर वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं हैं जो बेकार पड़े हैं और पक्के महल हैं जो खंडर बने हुए। तो अल्लाह ताला ने पिछली कौमों की तारीख को हमारे जहन में दोहराया है कि देखो तो सही, कभी वो दौर था कि वो यहां पे आबाद थे, आज इसी जमीन पे तुम आबाद हो। आज तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, तुम जितना मर्जी गलत कर लो। इससे पहले कि लोग तुम्हारे घरों में चलें फिरें, तुम आज इबरत हासिल करो। और वाकई हजरत अली ने अपनी नसीहतें की थी जो अपने बेटों को, तो उसके चंद अल्फाज हैं कि मेरे बेटो अपने दिल को जिंदा रखना अल्लाह की बातों से, और दिल की जिंदगी अल्लाह के जिक्र से है और अल्लाह के नबी की बातों से है। अपने दिल को नूरानी बनाना और दुनिया से बेरगबती रखना, इससे तुम्हारा दिल ताकतवर बनेगा। और कभी अगर ये दिल उछलने लगे तो उसे मौत की याद दिला देना, मौत की याद दिला के इसको जलील करके उसको ताबे करना, अपने अंडर कर लेना। मौत को याद दिला के इंसान का दिल सीधा होता है। और जब कभी ये दुनिया की तरफ भागने लगे तो उसे यकीन दिलाना कि तुम्हें मर जाना है, छोड़ जाना है। लिहाजा दुनिया मेहनत का मैदान नहीं, आखरत असल मैदान है मेहनत का। और देखो जमाने के किस्से और पिछली कौमों के वाकयात सुनाकर दिल को इबरत दिलाना, और इनके खंडरों और वीरानों में जाना और खड़े होकर इनसे पूछना कहाँ चले गए जिनके लिए लाओ लश्कर थे। इतने बड़े बड़े लोगों के लश्कर हुआ करते थे, कितनी बड़ी बड़ी फौजें थी, कितना बड़ा सिकंदर आजम था, कितना बड़ा फिरौन बादशाह था, कितना बड़ा नमरूद बादशाह था, कितनी बड़ी आद कौम थी। कहाँ चले गए वो सारे? तो कहते हैं तो एक दरो दीवार की एक एक ईंट तुम्हें कहेगी, एक एक गली, एक एक खिड़की, एक एक मेहराब तुम्हें ये कहेगी कि हम धोखे का घर थे, वो हमें छोड़ के चले गए और अंधेरे घर में जाके सो गए। मेरे बेटे एक दिन तू भी जाकर कब्र में सो जाएगा, तो मेरी नसीहत याद रखना, जब दुनिया और आखरत में टक्कर हो तो आखरत बचा लेना, दुनिया छोड़ देना, दुनिया बेच देना, आखरत ना बेचना। इसलिए कि अगर आखरत बेच दोगे तो दुनिया तो छूट ही जाएगी, दुनिया में तो किसी ने रहना है ही नहीं है। जब हमारे सामने दुनिया और आखरत की दरमियान टक्कर होती है, हम किसको खरीदते हैं और किसको बेच देते हैं, हम किसको लेते हैं और किसको छोड़ देते हैं? हम तो दुनिया का छोटा सा फायदा भी नहीं कुर्बान कर सकते। हाय यहां भी जरा सा नुकसान हो जाएगा, हाय यहां भी जरा सा मुझे कुछ देना पड़ेगा। आखरत भले जाए तो जाए, अल्लाह का फरमान टूटे तो टूटे, नहीं ये नहीं हम छोड़ सकते। तो देख लें फिर, हमने पढ़ा है ना कि उस दिन तो वो हैबत होगी, कोई किसी को पूछेगा नहीं। अब फिर उस दिन लोग कहेंगे अब जरा मोहलत दे दो, अब जाएं हम अपनी आखरत को सीधा कर लें, अब जाएं हम आखरत के लिए कुछ अमल कर लें, अब जाएं तो अब हम फरमा बरदारी कर लें, अब जाएं हम गाने नहीं सुनेंगे, अब हम सूद नहीं खाएंगे, अब हम बेपर्दगी नहीं करेंगे। कल तो कह रहे होंगे, मगर कल का कहना सुना नहीं जाएगा। आज कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, आज को बनाओ अपनी। तो उजड़ी बस्तियों को नहीं देखा, उन्होंने भी अपना आज ही बनाया था, अब देखो भूली बसरी दास्ताने बन गए। तुमने देखा नहीं है कि अल्लाह ने उनके साथ क्या किया? लोग कहते हैं यही की बात आप तो करते रहते हैं, लोग चांद पे चले गए आप यही बस लेके बैठे हैं और यही कहते रहते हैं। तो लोग चांद पे तो चले गए हैं, चांद तक पहुंच गए, लेकिन इन उजड़ी बस्तियों से अपने अंजाम को ना सीख सके। इतनी अकल भी ना आई कि इनसे ये सीख लें, ये समझ लें कि हमारा भी यही अंजाम होने वाला है, हम भी इन घरों को इसी तरह छोड़ के चले जाएंगे। अल्लाह को छोड़ देते हैं इन घरों के लिए और ये घर एक दिन हमें छोड़ जाएंगे। तो अवलम यरो अन्ना नसुक अल्माء इलल अर्द, क्या भला उन्होंने नहीं देखा कि हम चलाते हैं पानी को बंजर जमीन की तरफ, जो बिल्कुल बंजर है उसके ऊपर कोई सब्जा नहीं है, उस जमीन की तरफ पानी को चलाते हैं। और फिर क्या होता है, जब पानी वहां पे पहुंचता है तो नुखरिजु बिही ज़रअन, फिर हम निकालते हैं इससे पानी की वजह से खेती निकालते हैं, ताकुलु मिनहु अनआमुहुम व अनफुसुहुम, खाते हैं इससे इनके मवेशी भी और वो खुद भी खाते हैं। अफला युबसिरून, क्या फिर वो नहीं देखते। एक ऐसी मिसाल अल्लाह ताला लेकर आए हैं कि जो रोजमर्रा यानी हमारे सामने होती है, हम देखते हैं जमीन बिल्कुल बंजर होती है, उसके बाद बारिश जब होती है तो सब्जा उग जाता है, और फिर उस सब्जे से सब फायदा उठाते हैं, मवेशी भी उठाते हैं, इंसान भी उठाते हैं। तो इसी तरह इससे ये समझाया गया कि अगर आज मक्का की सरजमीन इस्लाम वालों के लिए बंजर है, तो अल्लाह की रहमत जो है वो क्या है, ये बारिश जो है वो क्या है, पानी जो है उससे मुराद है कुरान। कुरान की जब बारिश पड़ेगी तो देखे यही जमीन आबाद हो जाएगी, फिर इससे फायदा उठाएंगे सभी। जब ये आबाद हो जाएगी तो सबको फायदा पहुंचेगा। और वाकई देखें, उस वक्त तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था, मगर आज वो जगह सेंटर है ईमान का, इस्लाम का। और जब भी जहन में वो जगह आती है तो क्या जहन में आता है, दीन, ईमान, इस्लाम, नूर अल्लाह के दीन का। आज अल्लाह ताला ने उस जगह को कैसे आबाद कर दिया ईमान से, हर वक्त वहां पे दिन और रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर वक्त वहां पे आबादी है। तो ये अल्लाह का वादा था जो पूरा होके रहा। उस वक्त नहीं कोई सोच सकता था, लेकिन मायूस ना कभी हो। और इंडिविजुअल्स के लिए भी ये है, कौमों के लिए भी है, किसी इंसान के बारे में भी कभी हम सोच लेते हैं ये तो कभी हो नहीं सकता, ऐसे नहीं होगा, और ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता। हम नहीं जानते, जब ये बारिश होती है कुरान की तो जैसे खेतियां लहलहा उठती है ना, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं, कौन कब बदल जाए। और फिर उससे ना सिर्फ वो खुद फायदा उठाए, उसके इर्द गिर्द वाले भी फायदा उठाएंगे, उसकी जात ऐसे बन जाती है। हम मायूस हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं होना, बहुत जल्दी हम मायूसी की बातें करने लगते हैं, इतना अरसा हो गया बताते हुए, ये तो इसके काम ही ऐसे हैं कि इसने ऐसे होना। लेकिन नहीं, कुफारे मक्का जो कुफार कहलाते थे, मुशरिकीन कहलाते थे, बड़े सख्त दिल कहलाते थे, खून रेजियां करने वाले थे, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले थे, उनके दिल जब बदले तो कैसे हो गए वो। खेतियां जो सरसब्ज लहला रही हूं, पहले क्या हुआ करते थे, बंजर जमीन, बंजर जमीन पे जब पानी पड़ा तो वो सब्जा उगाने लगी, जिससे फिर उनको खुद भी फायदा हुआ और उनके इर्द गिर्द वालों को भी फायदा हुआ। समझ आई आप बात, कि हर चीज किस चीज, अर्थ अल जुरुस किस चीज की तरफ इशारा है, जो मुर्दा दिल है, बेआबाद दिल है। और फिर जरान कैसा वो बन गया, सरसब्ज हो गया जब उसके ऊपर पानी पड़ा, कुरान आया, फिर इससे किस किसने फायदा उठाया, उसने खुद भी उठाया और उसके इर्द गिर्द वालों ने भी उठाया। अफला युबसिरून, क्या फिर वो भला देखते नहीं है। हमें अल्लाह के वादों का शायद इतना यकीन नहीं होता, हम जल्दी मायूस हो जाते हैं, लेकिन वाकई अल्लाह का वादा सच होके रहा। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, और वो कहते हैं ये कब होगा, ये वादा कब, ये फैसला कब होगा हमारे दरमियान, फैसला किस चीज का। वो मुशरिकीन ने मक्का जो थे ना, वो बेसब्रे हो जाते थे, कहते थे कि अगर वाकई तुम सच्चे हो और तुम जो दीन लेकर आए हो वाकई सच है, तो फिर बताओ हक और बातिल का फैसला होना चाहिए। फिर तुम्हारी जो हालतें आजकल चल रही हैं, हम देख रहे हैं कितना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हो, कितनी फाके हो रहे हैं तुम्हारे पास, और कितना तुम्हें तकलीफें दी जा रही हैं, तो फिर फैसला क्यों नहीं आ जाता, सच्चे हो तो फैसला करो, दिखाओ। और दूसरा माना यह है, फतह से मुराद क्या है, आखिरत का दिन, तो तुम क्यामत से डराते रहते हो, क्यामत आनी क्यामत आनी, बताओ भी आ भी जाए आप क्यामत, अगर तुम सच्चे हो तो लाके दिखाओ ना, कब आएगा वो क्यामत का दिन। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वो कह रहे हैं क्यामत का दिन, या वो कह रहे हैं फैसले का दिन कब होगा, फैसला कब होगा? और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कुल यौम अल फतली ला यनफाउ लदीना कफरू ईमानुहुम फलाहुम युनज़रून, कि जब वो फैसले का दिन आ गया ना, ये नहीं फरमाया कि फैसले का दिन उस वक्त आएगा। देखिए जवाब और सवाल के अंदर आपको वैसे लग रहा है ना कोई मुताबिकत नहीं है, एक वो पूछ रहे हैं कब होगा और जवाब में दिया जा रहा है कि उस दिन कोई किसी का ईमान लाना काम नहीं आएगा। असल में बात यह है कि वो ये पूछा करते थे, ये जो सवाल पूछते थे ना, वो इसलिए नहीं कि उनको जानना होता था, उनको इल्म लेना था, बल्कि वो किस लिए पूछते थे? मजाक के तौर पे, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे ना कि कयामत का दिन कोई है। इसलिए जवाब भी अल्लाह ताला ने वो ही दिया कि तुम सवाल तो कर रहे हो ना कयामत कब आएगी या फतह कब होगा, कब फैसला होगा, तो इसकी जल्दी ना मचाओ, जल्दी ना करो इसकी, क्योंकि जब वो आ गया ना तो तुम्हारा ईमान लाना कोई तुम्हें फायदा नहीं देगा। फिर तुम उस दिन ईमान ले भी आए, तुम उस दिन मान भी गए, तो कोई फायदा नहीं होगा। मोहलत मांगी भी तो मोहलत नहीं दी जाएगी, समझ आई बात? और अगर इसको दुनिया में फैसले का दिन करें तो दुनिया में फैसले का दिन यौमुल बदर था, बदर के दिन फैसला हो गया था, उस दिन फिर वो जो मारे गए उनको तो फिर कोई उनके ईमान लाना तो कोई काम नहीं आया ना, वो तो ईमान लेकर जब मौत इंसान की आ जाए तो उस वक्त वो ईमान लाए भी तो कोई फायदा नहीं है, और कयामत के दिन भी अगर कोई ईमान लाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। फआरिद अनहुम, तो जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं ना उनसे आप एराज कीजिए ए नबी, इनको इनके हाल पे छोड़ दें, वंतजर, और आप इंतजार कीजिए, इन्नहुम मुंतजिरून, वो भी इंतजार कर रहे हैं। आप किस चीज का इंतजार करें, आपको इंतजार किस चीज का करना है कि आप ये इंतजार कीजिए कि अल्लाह ताला फैसला कर देगा और अल्लाह ताला की मदद आएगी, इनकी बातों की परवाह ना करें। और मुशरिक किस चीज का फैसला, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार इस चीज का कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कब गर्दिश जमाना आए और कब आपकी, अल्लाह ताला माफ करे, वो ये सोचते थे कि आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई मौत आ जाए, ताकि ये दीन ही खत्म हो जाए, ये दीन सस्टेन ही ना कर सके, ये सरवाइव भी ना कर सके और सब कुछ खत्म हो जाए, तो वो इस चीज के इंतजार में थे कब वो दिन आता है ना, ये नबी रहेंगे, जब ये नबी ही नहीं रहेंगे तो दीन ही खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप भी इंतजार कीजिए, वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार करें कि अल्लाह की मदद आ जाए, उसकी तरफ से फैसला आ जाए, हक और बातिल का फैसला हो जाए। और देखें ये वक्त इतना सख्त वक्त है, अगर आप इस आयात को सिर्फ ऐसे नहीं समझें, ये देखें कि ये मक्की दौर के मिड टाइम की सूरत है, इस वक्त में मुसलमानों के ऊपर कितने सख्त हालात थे, इतनी मुश्किलात थी, और वो लोग कह रहे थे कि अगर आप सच्चे हैं, इतने ही आप सही दीन पे हैं, तो आपके ऊपर क्यों नहीं आपके साथ कोई भलाई हो जाती, क्यों नहीं आपके साथ अल्लाह की कोई मदद आ रही, फैसला क्यों नहीं हो जाता? जैसे ये दुनिया में इंसान के ऊपर कभी कोई हालात ऐसे खराब आ जाए तो वो क्या सोचता है, अगर मैं सही रास्ते पे होती, अगर मेरा दीन सच्चा होता, अगर मेरी दुआएं सुनी जाती, नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला माफ करे, कभी इंसान ये भी सोचता है अगर कोई खुदा होता तो मेरी आज बात ना सुनी जाती, तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है और सारा है, और ऐसे ऐसे कई शैतानी ख्याल आते थे। तो इस वक्त ये सोचना चाहिए, इंतजार सब्र, क्योंकि ये जिंदगी इम्तिहान है और यहाँ पे इंसान के ऊपर मुख्तलिफ हालात आते रहेंगे, और अल्लाह ताला ने आजमाना है, सूरह अनकबूत में हमने क्या पढ़ा था, अल्लाह ने आजमा के देखना है कि अब इंसान क्या करता है। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला चाहते तो उसी वक्त ही दिखा सकते थे, उस वक्त ही फैसला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इंतजार करें। क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल था फैसला करना? नहीं, इंतजार का फिर क्यों कहा? ताकि आजमाइश हो सके। हजरत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए तब पानी निकला था, या बच्चा रो रो के हलकान हो गया था, पहली इस्माइल अलैहि सलाम की आवाज पे पानी क्यों नहीं निकल आया? हजरत हाजरा के भागने पे ही क्यों निकला? जब बिल्कुल जान लबों पे आ गई तभी क्यों आया फरिश्ता? क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था पहले पानी निकालना? सिसका के क्यों पानी दिया, तड़पा के क्यों पानी दिया? उनके वहां पे पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला तो पानी का इंतजाम कर सकता था। हम तो सोचते ना अल्लाह को तो पहले ही पता है, फिर अल्लाह ने ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया? अल्लाह को तो पहले ही पता है, फिर अल्लाह ने उनको बचा क्यों नहीं लिया? अल्लाह को पहले ही पता था, फिर अल्लाह ने उनको तकलीफ क्यों होने दी? तो अल्लाह को तो पता ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तो फरमाया कि कलमा पढ़ा है तो तैयार भी रहो इम्तिहान के लिए। ये वाकयात सुनाए अल्लाह ताला ने हमें ताकि हम भी पक्के रहें, जमे रहें और याद रखें कि जिंदगी में इम्तिहान आएंगे और इंतजार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज कोई बात हुई और अगले दिन ही बस फैसला हो जाए कि कौन सही है और कौन गलत है, और इंतजार की क्या जरूरत है? जब अल्लाह ताला को पता है तो अल्लाह की दिखा क्यों नहीं देता और ऐसे क्यों नहीं हो जाता? नहीं, इंतजार करो, हक और बातिल खुद सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वाकई आयात में इतनी गहराई है और पूरी सूरत ही इतनी जबरदस्त है कि इंसान अगर सोचे तो वाकई एक एक आयत के अंदर इस सूरत में ऐसे ऐसे रिमाइंडर्स हैं कि अगर रोज रात को ये रिमाइंडर्स जहन में हों तो हमारी जिंदगी शायद बहुत ही बेहतर हो जाए। और खास तौर पे ये वाली आयत ना, कि जिसमें ये है कि जो जो सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की आयत से नसीहत सुन के भी फिर उसे एराज करे। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह की आयत तो खुली नहीं है, अल्लाह की आयत तो सामने है, जिसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता बता दिया गया, फिर भी जालिम है वो लोग कि जो इनसे फिर भी कतराते हैं और इन पे गौर नहीं करते और इनकी तरफ नहीं आते। तो अल्लाह ताला हमें जो भी इस सूरत में कहा गया इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें मोमिनीन में से कर दे और फासिक होने से हमें बचा ले। अल्लाह ताला हमारा बेहतरीन अंजाम करे और अमल की तौफीक अता फरमाए जो भी हम पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए आप।
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.